ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। नमावं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशसारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वासलं पंगुलं हयते गिरिं जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदिनतरणं श्रीचैतन्येश्वरं। तो राधा रानी का विषय ये बहुत गुप्त विषय होता है, इसलिए राधा रानी के बारे में वेद पुराण में उतना वर्णन नहीं किया गया। तो वर्णन हुआ तो अभी लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। जब तक चैतन्य महाप्रभु आके राधा रानी को महिमा का प्रचार नहीं किए तब तक राधा रानी उतना उनको कोई जानते नहीं थे। इसलिए हमारे आचार्य ने बोलते हैं यदि गौरव ना है तो तबे की है तो केमने धरितम दे। राधार महिमा प्रेम रससीमा जगते जानातो के। यदि गौरव ना है तो गौरांग प्रभु नहीं आने से तुम्हें कैसा जीवन धारण करके रहता था। राधारणी का प्रेम का महिमा को कौन जगत में प्रचार करता था। तो प्रेम सबसे बड़ा चीज होता है और राधारानी उनका सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत होते हैं। तो राधारानी के बारे में राधारानी को हम लोग इतना प्राधान्य देते हैं। तो हम लोग तो वेद वेदांत उपनिषद पुराण जितना सारी शास्त्र है सब शास्त्र में से श्रीमद् भागवतम को श्रेष्ठ करके मानते हैं। और श्रीमद् भागवत में किधर भी राधारानी का नाम भी मेंशन किया गया नहीं। तो लोगों ने पूछते राधारानी को इतना क्यों प्राधान्य दिया जाता है। राधारानी के बारे में जगत में लोगों को मालूम नहीं था, ऐसे भी इंडिया में भी राधारानी के बारे में लोगों को ज़्यादा राधारानी का पूजा प्रचलन नहीं है। साउथ इंडिया आप लोग जाएंगे और राधारानी का किधर भी राधारानी का मंदिर नहीं देखेंगे। सिर्फ इस्कॉन और गौड़ी मठ के बगैर एक भी राधारानी का मंदिर नहीं है। बाजार में आप लोग जाएंगे जैसे वृंदावन में जाते हर जगह पर राधा कृष्ण देखते हैं ना, उधर जाके सिर्फ राधा कृष्ण ही देखेंगे। नो राधा नेक्स्ट राधा लोग मालूम नहीं राधा के बारे में। तो कृष्ण के पास किसी को रखेंगे तो रुक्मिणी और सत्यभामा को रखते हैं, वो भी नहीं इतना। इधर वे कृष्ण ही अकेला ही है। तो माध्वाचार्य ने आके तो कृष्ण के ही पूजा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु आने के बाद ये राधारानी का पूजा इंट्रोड्यूस हुआ। ब्रज में भी गुस्सा में लोगों ने जितना सारी कृष्ण का विग्रह को उद्धार किया ना, सिर्फ कृष्ण ही थे, असल कृष्ण की ही पूजा करते थे, तब भी राधारानी का पूजा नहीं होता था। फिर बाद में पुरी का जो राजा थे वो राधारानी विग्रह भेजे, फिर राधारानी पर आर्ट किया गया सब हर जगह पर। तो पुरी में ऐसा बोलते थे जगन्नाथ का पास में एक लक्ष्मी देवी करके एक देवी को पूजा करते थे, लेकिन वो बहुत पहले दक्षिण भारत में कोई भक्त राधारानी का पूजा करते थे। तो राधारानी का पूजा, राधारानी का विषय बहुत गुप्त विषय होता है, इसको वेद गोप्य बोलते हैं। वेद में राधारानी के बारे में एक गुप्त भाव में रखा गया। तो राधारानी का महिमा इतना श्रेष्ठ होता है तो वेद वेदांत उपनिषद उनको महिमा को, उनकी महिमा को प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आए राधारानी को महिमा को प्रचार करने के लिए। इसीलिए बोलते हैं यदि गौर ना है तो तबे की हो तो गौरंग महाप्रभु नटकम, महाप्रभु नहीं आने से लोगों को राधारानी का महिमा जानकारी नहीं होता था। तो श्रीमद भागवत में क्यों राधारानी का नाम नहीं है इसके बारे में हमारा आचार्य लोगों ने बताते हैं। तो राधारानी का नाम सुखदेव गोस्वामी वर्णना करने से तो उनका इतना भाव आता था, तो उनके लिए भागवत कथा चर्चा करना, परिवेशन करना वो असमर्थ हो जाते थे, उनका कंठ रुद्ध हो जाता था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने खूब कोशिश किए कोई गोपियों का नाम नहीं बनने के लिए। और भी सनातन गोस्वामी बोलते हैं तो श्रील सुखदेव गोस्वामी तो भागवत में सृष्टि तत्व बताए, उपसृष्टि बताए, ग्रह नक्षत्र संस्थान बताए, और अब मनवंतर के बारे में बताते थे, भगवान का अवतार के में बताते थे। जब कृष्ण लीला के बारे में बताने के आए तो कृष्ण को बाल्य लीला बताते थे, तो सब गोपियों ने सुखदेव गोस्वामी का हृदय में आविर्भूत हुई। जो सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवत कथा कहते थे तो सब एल्डरली गुरुजन लोगों ने उपस्थित थे, तो कर्मी ज्ञानी योगी सब तरीका लोग तो उपस्थित थे ना। परीक्षित महाराज के जो प्रयाग प्रयोग प्रवेशन किए थे उस समय में, तो सब गोपियों ने आके श्री सुखदेव गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा दिए, सुखदेव गोस्वामी तुम सब कुछ बोला लेकिन हमारे साथ कृष्ण के लीला के बारे में मत बोला, ये बहुत शर्म का बात है, ये सब गुरुजन लोग है फिर मत बोलो। तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचने लगे ये पृथ्वी का मनुष्य को कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ लीला, कृष्ण का जितना लीला है सबसे श्रेष्ठ लीला ब्रज गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो लीला हुआ था, जो लीला श्रवण करने से ही हृदय का हित रोग जो काम वासना, सही लोग से श्रवण करेंगे तो काम वासना दूरीभूत हो जाएगा। जो भगवान का लीला में सबसे श्रेष्ठ लीला होता है, जय जय जल रस सर्वरस सार, समस्त रस का जो सार होता है ब्रज गोपियों का लीला भगवान श्री कृष्ण का साथ, वो लीला को मैं नहीं बताऊंगा तो जगतवासियों कैसे उद्धार प्राप्त होंगे। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने नहीं मैं तो मेरे को तो भूलना ही पड़ेगा तुम्हारे लीला के बारे में। तो ब्रज गोपियों ने बताया ठीक है तुम हमारे लीला को बोलो लेकिन हमारा नाम मत बोलो, मेरा नाम को छुपा के रखो। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत कोशिश की कोई भी गोपी को नाम नहीं बोलने के लिए, लेकिन बहुत कोशिश करने से भी वो आपको संभाल कर रख नहीं पाए। एक गोपियों का नाम इनडायरेक्टली बता दिया उधर, तो हमारा आचार्य ने एक श्लोक को उद्धृत करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला में थे तो राधा रानी को लेके भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए, सब गोपियों ने ढूंढते थे भगवान श्री कृष्ण को, तो कृष्ण किधर छोड़ के हम लोग चले गए। तो कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का पैर का चिन्ह को देख के लोग ढूंढते थे कृष्ण किधर गए। तो पैर का कृष्ण का पैर के चिन्ह देखते जाते 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 पैर कृष्ण का पैर का जो चिन्ह का साथ साथ एक छोटा पैर का चिन्ह भी देखने लगे। तो उससे मालूम हुआ भगवान श्री कृष्ण कोई गोपी को साथ में लेकर चले गए। तो गोपिका और गोपिका चरण का चिन्ह भी था, राधारानी का चरण में जो चिन्ह है ना, उस चिन्ह भी था, लेकिन उस चिन्ह के बारे में तो किसी को मालूम नहीं किसी का चरण का चिन्ह है, लेकिन ललिता विशाखा को मालूम है किसी का चरण का चिन्ह है। तो राधारानी का उनका सपक्ष में जो गोपियों थे उनको मालूम हुआ, लेकिन वो लोगों ने कुछ बोले नहीं कि कृष्ण किसी को लेके गए। तो दूसरा जितना गोपियों ने थे वो लोग उधर चर्चा करते हैं, वो लोगों का मुंह से श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये बताते हैं, अनया आराधिता नूनम भगवान हरीश्वर जत ना बिहाय गोविंद प्रियजम प्रिय अयम अनयत रह। अनया आराधिता नूनम, नूनम मतलब अवश्य ही, अनया आराधिता नूनम भगवान हरीश्वर, भगवान हरि कृष्ण भगवान, अनया आराधिता अवश्य ही अनया एक गोपिका द्वारा आराधित हुए, इसलिए अनया आराधिता नूनम भगवान हरीश्वर जत न बिहाय, जिसके लिए हम सबको छोड़ के चले गए। कितना गोपियों ने थे उधर रासलीला में, कितना? 3 करोड़ 3 करोड़। कितना गोपियों ने थे उधर? 70 कोटि गोपी, 100 करोड़ गोपी थे उधर। शरद पुण्यों का जो रास हुआ था महाराष्ट्र, 100 करोड़ गोपी जो देर। अभी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है?
120 करोड़।
होल इंडिया का पॉपुलेशन 120 करोड़। अब वृंदावन में इतना गोपी किधर से आ गए? भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण तो रासलीला भगवान की लीला होता है ना, तो ऐसा लीला नहीं। जो लोग घर घर से आते हैं, घर घर से आते हैं ऐसा भी आविर्भूत भी होते हैं। भगवान कृष्ण जब रासलीला करते हैं, झूलन लीला करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है झूलन लीला करने के लिए डेकोरेटर को बुलाने पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाने पड़ता है, सब सजाता है फेस्टिवल, ऐसा नहीं होता है भगवान का किंगडम में। भगवान के अंदर योग माया का द्वारा ये सब संगठित होता है, सब प्रकटित होता है, भगवान का शक्ति का विकार से सब प्रकटित होता है। मैं एक दिन भगवान का भगवत में फोटो देखता था, तो मैं देखा भगवान हम विष्णु क्षीर सागर में, या गर्भदक्ष विष्णु गर्भ सागर में अनंत शेष का ऊपर शयन करते हैं, सिल्क का कपड़ पहना है, कर्ण का कुंडल पहना है, हार पहना है, इत छवि में चित्र बनाते हैं। मेरे को यही सोचने लगा, हमें चिंता किया ये छवि बनाते हैं सही है, अरे क्षीरे सागर में भगवान सोए है, उनको सिल्क का कपड़ा कौन दिलाया उधर? हाँ, वो कौन स्वर्ण का उनका कर्ण का कुंडल बनाया, और कौन ट्रांसपोर्ट कंपनी उधर लेके गया? तो लोगों ने सोचा है ना, हाँ ये कैसा, ये मन मनमानी बनाता है। लेकिन भगवान के लिए इसे फैक्ट्री से बनाने हुआ चीज नहीं जाता है, वो सेल्फ मैनिफेस्टेड होता है। तो सेल्फ मैनिफेस्टेड होता है। पहले पहले जमाना में, पहले पहले इनकारनेशन अवतार में जब भगवान आते थे, तो बहुत भक्त लोगों ने भगवान को ऐसा मधुर रस में उनका सेवा करने की वासना करते थे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जब झाड़ी, रामचंद्र दंडकारण्य में जाते थे, दंडकारण्य का जो मुनि ऋषियों ने थे, तो लोग भगवान के पास प्रार्थना करते थे, प्रभु हाँ हम लोग आपको स्वामी करके चाहते हैं। तो रामचंद्र बोले, अभी इस अवतार में नहीं होगा, इस अवतार में हमारा एक पत्नी है, बहुपत्नी नहीं होगा, तुम कृष्ण अवतार में आओ। तो ऐसा बहुत ऋषिचारी श्रुतिचारी पहले पहले अवतार में जो जो लोगों ने भगवान को मधुर रस में सेवा करने के लिए बोलते थे ना, भगवान सब और लोग गोदान में भर के रखे थे, अब तुम जितना हो सब आओ उसी टाइम में, सब मेरे को तब तुम मधुर रस में सेवा करेंगे। नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे, तो कठोर तपस्या करते थे भगवान स्वयं। तो जब इधर कोई ऋषि मुनियों ने तपस्या करते हैं ना, तो इंद्र को बहुत चिंता पड़ जाता है, अरे इस तो तपस्या करते हैं वो सिद्धि प्राप्त कर जाएगा तो मेरा पद लेके ले जाएगा। तो इंद्र का एक आदत है, जब कोई इधर कठोर तपस्या करते हैं ना, वो रंभा मैंने कहा इधर भेज देते हैं, तुम जाओ नाचगान करके उसका पतन कर दो। तो इंद्र का तो मालूम नहीं, नर नर निश्चित स्वयं भगवान है, तो इंद्र भी भेज दिया कुछ, हाँ अप्सराओं को भेज दिया, तुम जाओ नाचगान करके उसका पतन कर दो। तो अप्सराओं ने आके नाचगान करने शुरू कर दिए, तो नरनारायण ऋषि को तो जो तपस्या तो टूट गया, तो जो आंख खोले सब हाँ अप्सरा नृत्य करते थे। तो भगवान को मालूम हो गया इंद्र ने भेजा उनको पतन करने के लिए, फलदान करने के लिए, ये भगवान है। तो भगवान इसको जंघ, ये जंघ ये क्या है, जंघ है जंघ को काटा, तो काटा उनको अंदर से बहुत सुंदर लड़कियों को निकाले, हजार हजार सुंदर लड़की को निकाले, और वो लड़कियों ने इतना सुंदर ही थी, तो स्वर्ग से जो अप्सरा रहा था ना वो देखने के लिए उन लोग के पास मेडक के माफिक लगते थे, इतना सुंदर ही थी। तो नारायण ऋषि ने बताया तुमको इंद्र ने भेजा मेरे पास मेरे को आनंद देने के लिए, तो ठीक है इसमें से जितना जो सबसे सुंदर है उसका नाम उर्वशी थी। तो उर्वशी को बुलाए और अप्सरा को बुला दो तुम इसको ले जाओ, इंद्र को बुलाओ नरनारायण तुम्हारे लिए उपहार दे इसको उसका रखने के लिए। तो सब अप्सरा चले गए, और जो सब रमणी इधर से आविर्भूत हुई थी तो लोगों ने बताया नरनारायण भगवान को, अभी हम लोग का क्या गति होगा, आप हम लोग सृष्टि के, हम लोग आपका शरीर से जन्म ले तो आपको हम लोग स्वामी करके मानेंगे। तो नरनारायण ऋषि, अरे मैं कैसा स्वामी होऊंगा, मैं तो सन्यासी बन गया, अब इधर तो स्वामी नहीं बन पाएंगे, तुम आओ जब वृंदावन में लीला करेंगे तो हम तब तुमको मैं ग्रहण करूंगा। ये सब गर्ग संगीता आप लोग पढ़ेंगे तो सब है, एक गोपियों का पूर्व जन्म के बारे में सब लिखा हुआ है। तो सप्तकोटि गोपी आके उधर पहुंच गए थे, तो सब को छोड़ के, तो एक गोपी का इतना प्रेम है, इतना आराधना का इतना मन है, इसलिए अनया आराधिता नूनम, वो लोग आपस में बात करते थे, एक गोपी इतना प्रेम से भगवान को आराधना की, तत न बिहाय गोविंद, जिससे गोविंद हम लोग सब शतकोटि गोपियों को परित्याग करके, 100 करोड़ गोपियों को परित्याग करके भगवान इतना वो इतना प्रिय है, न बिहाय हमको हमको छोड़ के अनेत रहा है, कोई निर्जन स्थान पर इनको लेके उनसे ही केवल सेवा प्राप्त करने के ले गए। तो हमारे आश्चर्य लोगों ने बोलते हैं इस शब्द का द्वारा अनया आराधिता नूनम, अनया गोपी कौन सा गोपी, आराधिता जो राधा, राधा शब्द ये आराधना से आता है। तो इसलिए भगवान श्रील सुखदेव गोस्वामी तो राधारणी का नाम खूब गुप्त भाव में उधर रख के गए। वेद शास्त्र में है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी वेद शास्त्र में था, तभी चैतन्य महाप्रभु भगवान करके हम लोग मानते हैं, ये मन से बना है, सब पुराण में है, लेकिन ये महाप्रभु भगवान कृष्ण भगवान का ये इंस्ट्रक्शन है योग माया के पास, तो मेरा विषय में सब सब लोग का पास छुपा के रखो, जब तक मैं चैतन्य रूप में नहीं आऊंगा, मेरा लीला को समाप्त नहीं करूंगा, तब तक मेरा बारे में किसी को मालूम होने मत दीजिए, और राधारानी का जो महिमा मैं जाके जगत में प्रचार करूंगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आने के बाद वो राधारानी का बारे में प्रचार हुआ, पंचम पुरुषार्थ के बारे में भागवत में दिया गया, प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम रत्राद्रो ना परहा, एक प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, जितना वेद पुराण उपनिषद है ना उसमें 4 पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं, चतुर्वर्ग के बारे में बताते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। मुनि ऋषियों के धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में ही मालूम था, लेकिन प्रेम के बारे में मालूम नहीं था। तो सुखदेव गुस्से में आके धर्म प्रज्ञित कैतव, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को बाद देके श्रीमद् भागवत में सिर्फ प्रेम के बारे में बताए, श्री श्रीमद् भागवतम अमलम प्रमाणम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमदम तत्रद्रो ना परहा। लेकिन ये प्रेम के बारे में ज्ञानियों जोगियों कर्मियों लोग भागवत श्रवण करने से भी ये प्रेम का श्रेष्ठता के बारे में लोग उपलब्ध नहीं होगा जब तक चैतन्य महाप्रभु का अनुगामी नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं जा पढ़ भागवत वैष्णव स्थान है एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। जाके भागवत पढ़ना है तो वैष्णव का साथ अध्ययन करना। कर्मी ज्ञानी योगियों का साथ भागवत अध्ययन करेंगे तो भागवत का पूर्ण अर्थ प्रकटित नहीं होगा। भगवान जैसे बोलते ना जे जथा मंग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामि हम। भगवान कृष्ण बोलते तुम जैसा प्रपत्ति करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ सामने में प्रकटित होऊंगा प्रकाश करूंगा। तो कृष्ण भगवान ही तो भागवत है ना, इसलिए भागवत भी सबका सबके लिए समान भाव से प्रकटित नहीं होता है। कर्मियों के लिए भागवत का अर्थ एक होगा, ज्ञानियों के लिए दूसरा अर्थ होगा, योगियों के लिए दूसरा अर्थ होगा, वैष्णवों के लिए दूसरा अर्थ होगा। आप वैष्णवों में रामानुज संप्रदाय का वैष्णव है निम्बार्क वो लोग के लिए भागवत का अर्थ दूसरा होगा। लेकिन भागवत का पूर्ण अर्थ प्रकटित होगा तो चैतन्य महाप्रभु का अनुगमी होता है। क्यों? समस्त वेद वेदांत उपनिषद का निष्कर्ष तो भागवत में दिया गया है लेकिन भागवत का जो असली अर्थ तो चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में प्रकट किया। तो ऐसा राधारानी बहुत गुप्त गोप्य इसलिए इनको वेद गोप्य बोलते हैं। देवता लोगों ने ब्रह्मा शिव वो लोगों ने सोचते हैं कैसे थोड़ा राधारानी का कृपा प्राप्त हो जाए। शास्त्र में राधारानी को महाविष्णु को माँ करके बोलते हैं। हमारा बंगाल में जाएंगे तो प्रश्न करते हैं तो लक्ष्मी को माँ बोलते हैं, दुर्गा पार्वती सबको माँ बोलते हैं, राधारानी को कोई माँ बोलते नहीं तो राधा रानी बोलते हैं। राधा माँ माता राधा कोई बोलते हैं? जय माता राधा जय माता राधा कोई बोलते नहीं, राधा रानी की जय बोलते हैं बरसने वाली। तो लोग प्रश्न करते हैं सबको माँ बोलते हैं तो राधा को माँ क्यों नहीं बोलते हैं? तो माँ राधा को माँ बोलते नहीं लेकिन वो आदि माता होता है, वो आदि शक्ति होता है, वो भगवान विष्णु का भी माँ होता है। शास्त्र में से बताया गया जितना शक्ति तत्व है ये सब शक्ति तत्व का मूल आधार श्रीमती राधारानी होता है। तो मैं मन से उत्तर देता हूँ राधारानी माँ बने नहीं, हाँ राधारानी माँ बोलते नहीं, हाँ राधारानी माँ बोलते नहीं तो राधारानी पुराण में से वर्णना है। तो पहले राधारानी ने ओ राधारानी एकदम सृष्टि के प्रारंभ में के बाद में जो विष्णु के एक आविर्भाव के बारे में पुराण में इसे वर्णना किया गया। राधारानी ने एक गोल्डन पहले गोल्डन एग को सृष्टि किए थे राधारानी। तो गोल्डन एग को देखकर राधारानी फेंक दिए थे जिससे भगवान विष्णु आविर्भूत हुए थे। तो कृष्ण उनको अभिशाप देते तुम कभी भी माँ नहीं बन पाएंगे, तुम ऐसे अनादर करके एक गोल्डन एग को फेंक दिए तो कभी माँ बन नहीं पाएंगे। तो एक ही कारण होता है व्रत में भगवान कृष्ण के साथ राधारानी का जो संपर्क होता है तो माँ का संपर्क नहीं होता है वो प्रेस का संपर्क होता है। इसलिए राधारानी को सब लोगों ने रानी करके मानते हैं लेकिन राधारानी आदि माता होता है, जितना आदि शक्ति होता है। तो राधारानी का जो लीला भगवान के साथ वो तो मधुर रस का लीला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान धरती पर आके जो गोपियों के साथ लीला किए उनको परकिया लीला बोलते हैं। एक सुकिया होता है एक परकिया लीला होता है। सुकिया का मतलब कोई स्वामी स्त्री का जो संबंध होता है तो सुकिया से परकिया श्रेष्ठ होता है क्योंकि भगवान को जो प्यार करते हैं तो उनका जो पत्नी होता है तो स्वामी स्त्री होने से उधर कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ता है। स्वामी से रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं लेकिन भगवत प्रेम रूल रेगुलेशन का ऊपर होना चाहिए। इसीलिए गोलोक वृंदावन में ये परकिया रस नहीं होता है तो सुकिया रस होता है, एक कारण होता है। कोई रूल रेगुलेशन का अधीन नहीं, जो प्रेम होना चाहिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, प्रेम का सिर्फ प्रेम होता है ऐसा होना चाहिए। और एक होता है मैं काल बोला था तो स्वामी स्त्री संपर्क तो सही संपर्क होता है, उस भय नहीं लगता है, लेकिन स्वामी स्त्री नहीं है, कोई किसी को प्राप्त करने के लिए जाते हैं उसको डरते डरते हो जाने पड़ते हैं। तो राधा रानी गोपियों ने तो गोलक वृंदावन से आए, लेकिन योगमाया ऐसा एक परिस्थिति सृष्टि किया ब्रज में, तो राधा रानी का पति दूसरे लोग बनेंगे, सबको मालूम होगा राधा रानी दूसरा का पत्नी है, कृष्ण दूसरा लड़का है। तो राधा रानी बहुत बाधा विघ्न प्रतिबंध को अतिक्रम करके कृष्ण के पास पहुंचना पड़ेगा। तो सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, ये राधा रानी का भाव था। भगवद गीता का जो श्रेष्ठ शिक्षा है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के पास पहुंचने के लिए सब नीति नियम धर्म का सब छोड़ के, धर्म का जितना भय सबको छोड़ के मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, इसीलिए ब्रज में ये परक्या रस का व्यवस्था योगमाया ने किया। लेकिन इस धरती पर कृष्ण का कार्यकलाप को कोई अच्छा करके नहीं मानेंगे, कोई हम लोग तो कृष्ण भक्त है, कृष्ण जो करते हैं हम लोग सुन के आनंद लगते हैं, तुम्हारा बेटा जो करेगा वो अच्छा लगेगा, ये दूसरा संप्रदाय का लोग सुनेंगे तुम्हारा भगवान कौन है, ना कृष्ण भगवान है, वो क्या करते थे, तो पहले तो बोलते हैं कृष्ण गाय चराते थे, अरे भगवान का दूसरा कोई काम मिला नहीं, हाँ भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रभु है तो गाय चराने वाला, लेकिन भगवान चालाक है तो भगवान ने इतना अच्छा सेवा लिए तो उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में जाने नहीं पड़ेगा, वो ब्रह्मा शिव विष्णु को सब लगा दे, तुम सब करो मैं गाय चराऊंगा, बस दिमाग का जरूरत नहीं है। तो भगवान एक गोप बालक रूप में क्यों आए, न भगवान ने सोचा मैं गोप बालक रूप में आऊंगा तो हर रोज जाके सारा दिन भर जंगल में रहूंगा तो गोपियों के साथ मिल पाऊंगा, ये बेस्ट सर्विस है मेरा लिए, तो इसलिए इसको भगवान ने चुना, तो मैं गोपियों लीला करने के लिए जंगल में जाके घूमते रहूंगा। तो लोगों ने जब सुना कि भगवान चोरी करते हैं, भगवान लोग को मारते हैं, भगवान दूसरा को पत्नियों को लेकर मध्य रात्रि में डांस करते हैं, ये कौन सा कल्चर है, ये सबसे डिग्रेडेड कल्चर है, हमारा भगवान तो मारते हैं इसीलिए लोगों ने बोलते हैं अरे कैसे भगवान है सबको मार जाते हैं, ये कैसे भगवान, भगवान बचाना चाहिए तो मारते हैं। ऐसा हमारा जब प्रचार शुरू हुआ जर्मन में तो हम लोग को विरोध में केस किए जर्मन लोगों ने, क्या तो जाके नरसिंह कोर्ट में नरसिंह भगवान का पिक्चर को पेश किया, देखो कैसे भगवान का पूजा करते हैं, है ये मनुष्य को फाड़ देते हैं ऐसा भगवान है। तो ऐसा भगवान का कार्यकलाप, कृष्ण का कार्यकलाप तो सबसे अतिक्रम कर लिया, चोरी करने से शुरू करके पर नारियों को हरण करना सब कुछ कृष्ण का चरित्र में आ गया। इन प्रभुपाद ने बताते हैं देखो इसको समझने के लिए क्यों ऐसा भगवान कृष्ण करते हैं, गीता में भगवान ने बताया ना, तो एक पेड़ है जिसका जड़ ऊपर है शाखा प्रशाखा नीचे होता है, ऐसा पेड़ किधर देखा जाता है, तालाब का किनारे पर, नदी का किनारे पर, ये भौतिक जगत ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिफलन होता है। तो भौतिक जगत में जो प्रतिफल आध्यात्मिक जगत में जो सबसे ऊंचा होगा ना, भौतिक जगत में सबसे नीचे होगा, भौतिक जगत में सबसे आध्यात्मिक जगत सबसे अच्छा है, भौतिक जगत सबसे बुरा है। तो भौतिक आध्यात्मिक जगत में ये लीला सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन भौतिक जगत में सबसे घृण्य होता है। तो भगवान जो करते हैं दूसरा होता है, इसलिए गौर गोविंद स्वयं महाराज ने बोलते थे तो भगवान जो करेंगे वो लीला, हम लोग उसको अनुकरण करेंगे तो हम लोग खाएंगे किला, हम लोग को किला मिलेगा, भगवान को हम लोग अनुकरण नहीं करना नहीं चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं भगवान को इमिटेशन मत करो, वो तो भगवान है, वो ब्रज गोपियों को लेकर लीला करते हैं, वो गोपी जन बल्लभ है। तो हमारा बच्चे लोग बोलते हैं अरे भगवान इतना गोपियों को लेकर लीला किए, मैं दो चार लड़कियों को लेकर खेला करते तो क्या प्रॉब्लम है, तो भगवान तो आदर्श देखा है। प्रभुपाद बोलते हो तुम भी गोपीजन वल्लभ होने चाहते हो, हाँ तुम गोपीजन भगवान गोपीजन वल्लभ थे और गिरिवर धारी भी थे, छोटे अंगुल में गिरिराज धारण किए थे, तुम गिरिराज को धारण कर पाएंगे? अरे गिरिधारी तो बात दो, एक टेबल को धारण कर पाएंगे? एक टेबल धारी बना पहले वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोगों को ये मालूम होना चाहिए कृष्ण के लिए ये कार्यकलाप कैसा ठीक है। मैं कल बताता था उधर, ये तो कृष्ण का स्वरूप शक्ति का प्रकाश है। कृष्ण और लोग के साथ ये मधुर रस का लीला विलास कर सकता है, तो कृष्ण को हम लोग लीला करेंगे तो क्या होगा, किला खाएंगे। इसीलिए हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं राधारानी का एक लीला बताऊंगा। तो हाँ, मैं जो बोलता था ना, जो कृष्ण का क्या आनंद था, तो कृष्ण पत्नी के साथ तो स्वाभाविक संपर्क है, लेकिन प्रेम और घनीभूत होता है जब प्रेम प्रेम से कोई बाधा आता है, वो तो बाधा को अतिक्रम करके जाने से प्रेम से ज्यादा आनंद आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा लीला करते थे, तो बाहर के लिए हाँ उनका उनके पति थे अभिमन्यु थे, हाँ उनका सास थे के जटिला और कुटिला थे, हर से प्रतिबंधक सृष्टि करते थे। जटिला कुटिला को बुरा नहीं मानना, वो भी अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का आनंद देने के लिए सबसे बड़ा काम किया। सार्थ में राधारानी को रुकते थे लोगों ने, जटिला कुटिला बहुत बुरी आदमी है, हाँ राधारानी क्यों नहीं, वो राधारानी को रुकने से उनको प्रेम भाव को ही बढ़ाते थे, इसलिए वो लोग भी हम लोग का नमस्या है। वो बहुत स्पेशल रोल है जटिला कुटिला का, हाँ एक कृष्ण का राधारानी के भाव में, उस पर चंद्रावली का भी स्पेशल रोल है। ये सब भगवत धाम योगमाया का संगठन है भगवान का प्रेम ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो भगवान क्या करते थे, भगवान को बहुत आनंद आता था राधारानी शादी किए तो जटिला कुटिला अभिमन्यु को बुद्धि बनाने से उनको बहुत आनंद आता था। बुद्धि बना के कैसा राधारानी के साथ मिलित होते थे, वो लोग समझ नहीं पाते थे। कभी कभी ऐसा होता था जटिला को मालूम नहीं पड़ता था, कृष्ण ऐसा रूप लेके जाते थे, जटिला कृष्ण को बोला के राधारानी के पास सारा रात भर रखते थे। तो कृष्ण से ऐसा बोलता हमें कैसे बुद्धि बनाते हैं, कृष्ण को आनंद लगता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक मकर संक्रांति का दिन था, तो कुटिला ने देखी राधारानी सुबह सुबह राधारानी घर में नहीं, तो राधारानी किधर गई, तो वो नदी में जामुना पर गई मकर स्नान स्नान करने के लिए। तो कुटिला का मालूम है ये स्नान करने के लिए नहीं गई, ये गई कृष्ण के साथ मिलने के लिए, तो देखने के लिए गई। कुटिला का यही सारा दिन भर काम था, सिर्फ राधारानी को पकड़ेंगी, हाँ ये दिन भर यही काम था, दिन भर ही सोचता था। तो वो देखने के लिए नंद भवन पर कृष्ण है कि नहीं, तो नंद भवन पर गया तो कृष्ण किधर है, तो नंद भवन ने लोगों ने बताया आज मकर संक्रांति है, इसलिए माँ जशोदा ने कृष्ण को भेज दिए जमुना स्नान के लिए। तो कुटिला सोचा हाँ राधारानी भी नहीं है कृष्ण भी नहीं, दोनों ही जमुना स्नान करते हैं, मैं जाके देखूंगी क्या होता है। तो जमुना का किनारे पर गए तो उधर देखे उधर राधा नहीं कृष्ण भी नहीं, दोनों ही सब जमुना स्नान में नहीं, तो उसको मालूम हुआ दोनों स्नान करने के लिए नहीं, भाई ये किधर कुंज में बैठे हुए। तो राधा कृष्ण दोनों ने जमुना स्नान नाम करके वो कुछ किसी घाट पर जाके सब गोपियों ने एक कुंज में बहुत अच्छा से पुष्प सज्जा बनाए थे। तो राधा कृष्ण उधर जाके ललिता विशाखा गोपियों ने थे तो प्रेम वार्तालाप करती थी अंदर में बैठ के, और तुलसी गोपी वो दरवाजे का बाहर ठहर के गाड़ देती थी, कोई आ जाएंगे हाँ वो पहरा देती थी। तो कुटिला वो सारा वृंदावन घूमते घूमते हो जाता किधर कृष्ण है, किधर कृष्ण राधा क्या करते हैं। तो दूर से तुलसी देख पाई जो कुटिला आते हैं, तो कुटिला हाँ दौड़ गए अंदर में, हे अभी कुटिला ने तुलसी तुलसी अंदर में जाके बोले कुटिला आ रहे हैं कुटिला आ रहे हैं। तो राधारानी अभी क्या करेंगे, राधारानी तो चिंतित हो गई अभी क्या होगा, अरे कुटिला आ जाएंगे देख देंगे मेरे को तो अवस्था हालत खराब हो जाएगा। तो किसी ने बोले तुम मत सोचो मैं सब संभाल लूंगा, तुम मत सोचो चिंता मत कर तुम इधर बैठो। तो गोपियों को तुम मेरे को अभिमन जैसा सजा दो, अभिमन का मतलब सजा दो। तो गोपियों ने उनको अभिमन का जैसा सजा दी, तो कुंज से निकल के बाहर चले गए। और कुटिला तो ढूंढती थी किधर राधा कृष्ण है, तो देखा अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु तुम इधर क्या करते हो, मेरा दादा क्या करते हो इधर, अरे मैं क्या करूं, कृष्ण अभिमन्यु का गला में बोलते हैं मेरा एक छोटा बच्चा किधर भाग गया था, मैं ढूंढते हैं उसको किधर गया, तुम इधर क्या करते हो, तो बोला मैं इधर मेरा माँ मेरे को भेजा तो तुम जाके देखो ये राधा रानी किधर गया, तो मैं सुना हूँ इधर राधा रानी कृष्ण के साथ किधर है। तो कृष्ण ने बताया अभिमन्यु को, हाँ ऐसा राधा रानी कृष्ण के साथ में है, मैं इधर बैठा हूँ तुम जाके ढूंढो, तो उसको देख पाएंगे तो पकड़ के ले आओ, हाँ मैं आज कृष्ण को पकड़ूंगा बहुत शास्त्री होंगे कौन सा जाके बता दूंगा, हाँ करके कृष्ण भगवान उधर बैठे। तो वो गई कुटिला जाके, कुटिला जब गए सब गोपियों ने बाहर ठहरे थे, तो गोपियों ने ललिता ने पूछे ओ कुटिला तुम क्यों आए, आज आए मकर स्नान करने के लिए, तो नहीं नहीं मकर स्नान करने के लिए नहीं, तुम लोग का चरित्र को देखने के लिए आए। तो हम लोग चरित्र को क्या, हम लोग का चरित्र क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मैं गंध से सबको मालूम, सब मेरे को मालूम हो जाता है क्या गंध होता है, अरे मेरा हरि का गंध होता है, हरि का गंध मेरे को मिल गया। तो हरि का मतलब क्या है, कृष्ण है, हरि का दूसरा मतलब है सिंह, सिंह क्या है, लायन, लायन है सिंह, हाँ सिंह, हाँ सिंह है। तो ललिता ने बताया हो, ललिता सोचा हरि का मतलब सिंह, ओ इधर सिंह है, अरे बताओ बताओ सिंह किधर है, हम लोग लड़की लोग कहे हम लोग भाग देना था, सिंह खा लेगा, हाँ ऐसा उपहास करके बोले। तो कुटला बहुत गुस्सा गई, हाँ तो उनका चरित्र का बोले बोलते थे, तो बोले क्यों मेरा चरित्र में ऐसा बोलते हो, क्या ऐसा आरोप लगाते हो, तुम देखो क्या चरित्र के बारे में बोलते हो। तो कुटिल ने बताया तो मैं अंदर जाके देखूंगा, तो गोपी तुम दरवाजा खोलो। तो सखियों ने बताया नहीं नहीं ये बनदे भी दरवाजा बंद करके गए, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो कुटिला घुसा करके लात लगाया, उधर लात लगा के दरवाजा खोल के जब अंदर गया तो जो पुष्प सजा था, तो कुटिला ने देखा उधर राधा रानी का हार गोल्डन नेकलेस और कृष्ण का बन का फूल का हार पड़ा है। तो भाई तो मालूम हो गया, तो तुम दोनों अभी इकट्ठा था इधर, तो दोनों को दो हार को लेके तो फिर गया उनका भाई के पास गया, कौन सा भाई, हाँ जो बैठा है उधर कृष्ण, तो उनको देखा देखो ये प्रमाण है। तो अभिमन रूप में कृष्ण ने बताया हाँ तुमको बहुत धन्यवाद हो, हाँ तुम तो कुटिला वाला मैं कितना बार तुमको बताया कि तुम्हारा पत्नी ऐसा जाता है दूसरा पुरुष के साथ कृष्ण के साथ, तुम सुना नहीं, अभी प्रमाण देख लो। तो अभिमन तुमको बहुत धन्यवाद है, हाँ मैं मेरा बंधु गोवर्धन मल्ला है, गोवर्धन मल्ला कौन मालूम है, वो चंद्रावली का पति है, मैं जाके आज उसको बताऊंगा ये देखो ये कृष्ण तुम्हारा पत्नी को लेकर नष्ट भ्रष्ट करता है कर लिया और मेरा पत्नी का पीछे ही पड़ा है, मैं देख कंस का आज कंप्लेन करूंगा उसको, कहें गोवर्धन मल्ला कंस का दरबार में काम करता था, तो उसको जाके ये करूंगा तुम जाओ तुम ही घर वापस चले जाओ, और जब राधारानी वापस आएंगे उसको कुछ मत बोलो, हाँ चुपचाप रहो, क्योंकि मैं बता दूंगा कंस को कंस सैनिक भेज के कृष्ण और नंदमाध को अरेस्ट करके ले जाएगा, तुम कुछ मत बोलो, हाँ तुम जाओ, तो मैं आऊँगा दोपहर को कंस को खबर देगा मैं आऊँगा घर पर। तो कुटिला चला गई और कृष्ण हाँ अभिमन्यु वेश में मथुरा का तरफ चलने लगे, कुटिला जब चले गए कृष्ण मथुरा गए नहीं उधर छुप के बैठ के रहे, फिर राधा रानी उनका घर पर गई और कुटिला कुछ बोलते नहीं। तो दोपहर को कृष्ण अभिमन का रूप में आए, तो बोला मैं कंस को बोल के आया, कंस भी 200 बैटेलियन भेजते हैं कृष्ण और नंद को वो अरेस्ट करके ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं सुना मेरे को खबर मिला कृष्ण मेरा रूप में नकली रूप धारण करके इधर आएगा, तुम उसको अंदर नहीं घुसने देगा, जब आएगा तुम दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करके एक छात के ऊपर बैठो, जब आएगा आएगा उसको अंदर घुसने नहीं देगा, ठीक है। तो बोला हाँ ठीक है। तो कृष्ण तो बहुत बदमाश है वो, फिर बाद में आने के लिए प्लान करते हैं इसका। तो इसे बोल के कृष्ण अंदर में घुस गए, लेकिन राधा रानी पास में बैठे, तो ये दोनों कुटिला और जटिला अच्छा से दरवाजा बंद करके छत का, छत का ऊपर रूप क्या बोलते हैं, छत के ऊपर बैठे। तो कुछ देर के बाद तो गोस्त से गोचारण से तो अभिमन्यु जब आया तो अभिमन को कुटिला जटिला ऊपर बैठे, ओ तुम मेरा पुत्र का रूप सजग आया है, हाँ तुम्हारा तो अभिमन क्या पुत्र कर जाएगा, अरे तुम अभिमन नहीं है मेरे को मालूम है, तुम छद्मवेश में कृष्ण आए इधर, तुम इतना बदमाश हो मेरे को सब आगे से पहले से मालूम है, तुम भागो इधर इधर, और एक पार आएंगे तो ये पत्थर देख के तुमको तुमको क्या करूंगा सिर, हाँ तुमको मारूंगी और तुम सिर तोड़ दूंगी, भागो इधर से। तो अभिमन आश्चर्य हो गया, अरे क्या तुम बात बोलते हो, अरे मैं क्या कह, मैं तो अभिमन, तुम अभिमानी हो मेरे को अच्छा से मालूम है, भागो नहीं तो तुमको तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा मैं। तो अभिमन सोचा कि ये किस किस को भूत लग गए, कुछ हाँ भूत प्रेत लग गए, तो क्या हुआ, जितना अभिमन समझने की कोशिश किया ये लोग और गुस्सा होते थे, और गुस्सा होते थे, तुम आते हैं राधा रानी को लिए मिलने के लिए छद्मवेश में, भागा इधर से। तो अभिमन से भूत प्रेत लग गए, तो अभिमन फिर गए तो एक घोस्ट मास्टर को बुलाने के लिए, घोस्ट मास्टर क्या हिंदी में, जो भूत पिशाच को भगाता है, तांत्रिक, हाँ ओझा, ओझा तांत्रिक को बुलाने के। तो अभिमन्यु जाके सारा रात गांव गांव में ढूंढते हैं ओझा किधर है, ओझा किधर है। तो अभिमन्यु सारा रात घूमते हैं जंगल में गांव गांव में, और कृष्ण सारा रात राधारानी का मौज करते हैं, इससे कृष्ण का आनंद होता है, भागा को लोग बुद्धिमान रहने से। एक लीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में चमत्कार चंद्रिका में लीला को बनना के, ऐसा राधारानी के साथ कृष्ण का बहुत सारी लीला है, चमत्कार लीला है। राधा रानी की समस्त भक्त वृंद की खूब खूब आनंद।
वर्तमान पीढ़ी में